Hare Krishna. So we heartily welcome all of you in this today's morning class, and with among us is a very, very special and senior devotee, senior disciples of His Divine Grace Srila Prabhupada, His Grace Truth Karma Prabhu. I think Prabhuji is visiting this temple for the first time. Just a small introduction of Prabhuji. As you know that Srila Prabhupada was very fond of presenting Krishna consciousness to the scientific community in scientific terms, and Prabhuji has taken lead in that area, and he is known all over the world for contributions in his science. Specifically, Prabhuji is from USA and he is pioneer in integrating science and spirituality. Prabhuji has done PhD from Budapest, Hungary. He is also a prestigious member of History of Science Congress, Philosophy of Science Association, World Archaeological Association and European Association of Archaeologists. And I think many of you have heard of or even have that book of Forbidden Archaeology, which has been written by Prabhuji. And the speciality of this book is it has more than 300,000 copies have been sold of this book alone. It has been translated in more than 13 languages. It's over 900 pages, well document evidence that modern man existed even millions of years ago. So that whatever we have been taught in the school, that our ancestors are apes or monkeys, whatever that confusion is, Prabhuji has presented well document proof that it's a false theory. Besides this, Prabhuji has also appeared in many of the news channels, interviewing in various newspapers. Prabhuji travels all over the world, presents seminars in different universities. Apart from that, there's latest book by Prabhuji, Human Devolution. And there are some other publications like Beyond Illusion and Doubt, A Vedic Perspective on Western Philosophy, Divine Nature, Forbidden Archaeology's Impact, The Hidden History of the Human Race. So it's our great fortune that Prabhuji has come, has spared his valuable time to give his association to devotees here in Punjabi Bar. So one time, by chanting loudly Hare Krishna Maha Mantra, we would like to express our gratitude and welcome Prabhuji.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
तो प्रभुजी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं. प्रभुजी ने वैज्ञानिक जगत में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. प्रभुजी ने एक बुक निकाली है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, जिसकी 3 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, 13 लैंग्वेजेस से ज्यादा इसमें अनुवाद हुआ है. ह्यूमन डेवोल्यूशन, इसके अलावा अनेक पुस्तकें प्रभुजी के द्वारा लिखी गई हैं, जो खासकर वैज्ञानिकों को प्रचार करती हैं उस कम्युनिटी में. कृष्ण भावनामृत को बहुत ही शक्तिशाली रूप से प्रस्तुत करती हैं. तो प्रभुजी पहली बार हमारे मंदिर में आए हैं, तो अभी लेक्चर इंग्लिश में होगा और साइड बाय साइड हिंदी में ट्रांसलेट होगा. आप सबसे अनुरोध है, जो आपके मोबाइल फोन हैं, कृपया उसको आप चेक कर लीजिए, साइलेंट फोन पे हो, उसको सिद्ध कर लीजिए. हरे कृष्ण.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय.
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय. Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 12, Mohini Murti bewilders Lord Shiva, Text 5.
First Khand, Barva Adhyay, Mohini Murti Avatar Par Shivji Ka Mohit Hona. Shlok Sankhya 5.
शब्दार्थ
अनुवाद एवं तात्पर्य. This divine grace is Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Kirmara. Srila Prabhupada ki Adi Prarambh Anto Tatha Ant Asya Is Vyakt Jagat Ka Ya Kisi Bhi Bhautik Ya Drishya Vastu Ka Yat Jo Madhyam Madhya Palam Idam ये दृश्य जगत अन्यत आपके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अहम गलत धारणा बही आपसे बाहर यथा के कारण अव्यस्त अक्षय ना नहीं एतानि इतने सारे अंतर तत् वह सत्यम परम सत्य ब्रह्मा ब्रह्म चित आध्यात्मिक भवान आप अनुवाद हे भगवान व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा संहार सभी कुछ आपसे है किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म है अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते कृपया दोहराएं हे भगवान व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा संहार सभी कुछ आपसे है किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म है अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते तात्पर्य यतो वायमानि भूतानि जयन्ते वैदिक मंत्रों के अनुसार प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं भूमि रातो नल वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये आठ मिलकर मेरे भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं दूसरे शब्दों में दृश्य जगत के अव्यय भी भगवान की शक्ति से बने हैं किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि चूंकि सारे अव्यय उनसे प्राप्त होते हैं अतएव वे पूर्ण नहीं रहे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशिष्यते चूंकि वे पूर्ण इकाई है अतएव भले ही उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां क्यों ना उद्भूत होती हों वे पूर्ण बने रहते हैं इस तरह भगवान अव्यक्त कहलाते हैं जब तक हम परम सत्य को अचिंत्य भेदाभेद नहीं मान लेते तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं होगी भगवान हर वस्तु के मूल हैं। अहम आदि ही देवानाम वे समस्त देवताओं के मूल कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभव उन्हीं से हर वस्तु उदित होती है सभी दशाओं में हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें वे वास्तव में भगवान है उनके लिए ये मेरा है तथा ये किसी अन्य का में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि वे सब कुछ हैं इसलिए वे अव्यक्त कहलाते हैं जिसका अर्थ है परिवर्तन रहित तथा ना समाप्त होने वाला क्योंकि भगवान अव्यय है अतः वे परम सत्य हैं
ओम ज्ञान चमरंदस्य ज्ञान चंद्रमा स्वाहाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासवि भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Here, Lord Shiva is speaking very good Vaishnava philosophy.
यहां पर भगवान श्री बहुत ही अच्छी वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं.
Vaishnavanam yata shambhu, it is said Lord Shiva is a great Vaishnava.
ये कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत महान वैष्णव है.
Lord Shiva wants to see the Mohini Murti, the form that Lord Vishnu took as a woman.
भगवान शिव मोहिनी मूर्ति अवतार जो कि भगवान विष्णु एक स्त्री के अवतार में आते हैं, इनका दर्शन करना चाहते हैं.
A few years ago, I had an interesting experience in South India.
कुछ वर्ष पूर्व मेरा एक बहुत ही रुचिकर अनुभव हुआ दक्षिण भारत में.
I was giving some lectures about my work.
मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था अपने कार्य दे रहा था कुछ अपने कार्य से संबंधित.
Sometimes my lectures are organized by ISKCON.
कभी कभार मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ISKCON के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं.
Sometimes other Indian organizations, they arrange lectures for me.
कभी कभार अन्य भारतीय संस्था मेरे लिए ये लेक्चर्स का आयोजन करती हैं.
So one Indian cultural organization arranged for me to give lectures all over South India.
एक बार एक भारतीय संस्कृति संस्था थी, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में मेरे कार्यक्रम आयोजित किए.
I gave lectures in Bangalore, in Hyderabad, Chennai, Rajmundry, Vijayawada.
Bangalore, Chennai, Hyderabad, Rajmundry, ऐसे स्थानों पर पहुंचने ये लेक्चर्स दिए.
When I was in Vijayawad, I had some free time.
जब मैं विजयवाद में था तो मेरे पास कुछ खाली समय था.
And I asked the organizers of my tour, are there any interesting temples nearby?
तो मैंने अपने जो आयोजक थे उनसे पूछा कि कोई यहां पर मंदिर है आसपास रुचिकर मंदिर.
So they took me to an interesting temple in the village of Riali in Andhra Pradesh.
तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत ही रोचनीय मंदिर है, वो मुझे वहां पर लेके गए गांव में.
And there is a temple called Jagan Mohini Keshava Swami.
Tridan Mohini Keshav Swami ke naam se wahan par ek mandir hai.
And in this temple there is an interesting murti.
Is mandir mein ek bahut hi rochni hai vigrah hai.
From the front side it is nine with four arms.
आगे की तरफ से वो नारायण है चार भुजाओं वाले.
It's life size.
और बिल्कुल जीवित आकार के हैं.
But you can go around to the back side of the murti.
तो अगर आप मूर्ति के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाएंगे,
and you see the back side is in the form of a woman wearing a sari.
और पीछे की तरफ से एक स्त्री का रूप है साड़ी पहने हुए.
With the braid going down the back side.
और जो उनका पीछे चोटी है वो पीछे की तरफ नीचे जा रही है.
And they say that this deity shows Mohini Murti turning back to Lord Vishnu.
और वो कहते हैं ये विग्रह दिखाते हैं कि मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु की तरफ अपनी पीठ कर रही है.
And the murti has an interesting history.
और इस विग्रह का एक अच्छा इतिहास है, रोशनी इतिहास है.
When Lord Shiva was chasing the Mohini Murti, a flower fell from her hair at this place.
जब भगवान शिव मोहिनी मूर्ति का पीछा कर रहे थे तब उनके बालों से एक फूल उस स्थान पर गिरा था.
And at the place where the flower fell, the murti self-manifested.
और उसी स्थान पर जहां पर वो पुष्प गिरा था वहां पर विग्रह स्वतः प्रकट हो गए.
And a temple was built for it.
और एक मंदिर का निर्माण किया गया उनके लिए.
Of course, this was many millions of years ago.
निश्चित रूप से ये लाखों लाखों वर्ष पूर्व की बात है.
Over time, the temple was lost.
और समय के प्रभाव से वो मंदिर लुप्त हो गया था.
And the deity was covered by sand and jungle.
और जो विग्रह है वो रेत से ढक गए थे और आसपास वन थे, जंगल था.
And then a few thousand years ago, one king was traveling through that forest.
और कुछ हजार वर्ष पूर्व एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था.
And he fell asleep.
और वहां पर उसकी नींद लग गई.
And he had a dream.
उसको एक स्वप्न आया.
And in the dream, Lord Vishnu appeared to him.
उस स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए.
And said, "My deity of Mohini Murti changing into Vishnu is buried nearby."
और उन्होंने कहा कि मेरा मोहिनी मूर्ति का विग्रह जो किस प्रकार से विष्णु में परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही निकट है.
विष्णु told the king, "When you wake up, I want you to get into your chariot and drive. And at the place, at a certain place, the wheel will fall from your chariot. At that place, you dig."
तो जब जब तुम जाग जाओ तो उस विग्रह की खोज करो जो तुम्हारे रथ का पहिया है उसी दिशा में आगे की तरफ आपको वो विग्रह मिलेगा.
So the king woke up, he drove his chariot, at a certain place the wheel fell off, he stopped, he dug at that place, he found the murti.
और जब राजा उठा तो उसने अपना रथ चलाया एक स्थान पर उसका वो पहिया रुका और वहां पर उसने खोला तो वो विग्रह उसको प्राप्त हुए.
He began the construction of the temple that's there today.
और फिर उसने उस मंदिर का वहां पर निर्माण किया.
So I can understand why Lord Shiva wanted to see the Mohini Murti.
तो मैं समझ सकता हूं कि भगवान शिव क्यों मोहिनी मूर्ति जो रूप है उसका दर्शन करना चाहते थे.
So you'll hear all about that in this chapter, how Mohini Murti bewildered Lord Shiva.
तो आप इस संदर्भ में इस अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी मोहित हुए.
But here, Lord Shiva is speaking very good Vaishnava philosophy.
और इस श्लोक में यहां पर भगवान शिव बहुत अच्छा वैष्णव दर्शन का व्याख्यान कर रहे हैं.
He is speaking to Lord Vishnu.
वे भगवान विष्णु को संबोधित कर रहे हैं.
And before he asked to see the Mohini Murti,
Mohini Murti अवतार का दर्शन करने के पूर्व वो इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रहे हैं.
So in the purport,
तात्पर्य में
Srila Prabhupada says something interesting.
Srila Prabhupada बहुत ही रोचक वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं.
He says the Lord is the root of everything. Aham Adhirini Devanam. He is the original cause of all of the devas or demigods. Aham Sarvasya Prabhavaha. Everything emanates from him. In all cases, nominative, objective, positive, and negative, and so on, whatever we may conceive of in this entire cosmic manifestation is in fact the Supreme Lord.
भगवान हर वस्तु के मूल है. अहम आदि देवाना वे समस्त देवताओं के मूल कारण है. अहम सर्वस्य प्रभव उन्हीं से हर वस्तु उद्भूत होती है. सभी दशाओं में हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें वे वास्तव में भगवान है.
So he says, in all cases, nominative, objective, and so on.
सभी दशाओं में.
So, in the Sanskrit grammar, there are 8 cases.
संस्कृत व्याकरण में 8 केसेस हैं.
There's the subject case.
Subject case. Karta.
Yes, like Krishna is subject case.
I say Krishna. Karta. Karta karak hai.
Yeah. Karta karak. Yes. From Panini. Yes. Then there's the karma karaka.
उसके बाद कर्म कारक है.
Krishna.
Krishna.
And then there's karana kartaka.
कारण कारक.
Krishnena.
Krishnena.
Sampradava kartaka. Karaka. Sampradana Karaka.
Sambodhan Karaka. Samprada Karaka.
Yes. Krishnaya. Unto Krishna.
Krishnaya.
Apadana Karaka.
Apadana Karaka.
From Krishna. Krishna.
Krishna.
Adhikarana Karaka.
Adhikarana Karaka.
Krishne.
Krishne.
And then there's also genitive or possessive, Krishnasya.
Krishnasya.
And
Sambandha
Karaka.
Sambandha.
Yes, many disciples of Panini here.
Panini.
And then there's Vakata, Hey Krishna.
Sambodha, Hey Krishna.
Yeah. So, in the Srimad Bhagavatam, there is one verse in the sixth canto that expresses many of these meanings.
Srimad Bhagavatam chhate skand mein ek shlok hai jisme is prakar ke kai arth prastut kiye gaye hain.
Yasmin yato yena chasya yasmai yad yo yata kurute karyate cha. So it said, yasmin, in whom?
Yasmin, jismin.
That means everything is in Krishna. Nothing is outside Krishna.
इसका अर्थ है हर चीज कृष्ण में है, कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है.
यतः that means everything comes from Krishna.
यतः जिसका अर्थ है हर चीज स्रोत कृष्ण ही है, कृष्ण से ही प्रत्येक वस्तु आती है.
येन that means everything is done by Krishna.
Is
done, accomplished by Krishna. It is only Krishna who's working.
Pratyek chiz Krishna dwara hi hoti hai.
Krishna is making everything move.
Bhagwan Krishna hi har chiz ko chala rahe hai.
Yes, yeah. Everything belongs to Krishna.
Yes, yeah. Pratyek vastu Bhagwan Krishna ki hai.
Yes, my. Everything should be offered to Krishna.
Yes, my. Pratyek vastu Bhagwan Krishna ko hi arpit karni chahiye.
Yat karoshi, yat asnasi, yat shuhasi, tadasi, yat kurushva. Everything should be offered to Krishna.
Pratyek cheez Bhagwan Krishna ko arpit karni chahiye.
So, it's a very interesting verse in which Krishna is glorified in all of these cases.
Bahut hi rochak shlok hai jisme ye sare vibhinn prakar ke cases Bhagwan Krishna se sambandhit is shlok mein aate hain.
Everything is from Krishna, everything should be offered to Krishna, everything belongs to Krishna.
Har cheez Bhagwan Krishna se aati hai, har cheez Bhagwan Krishna ko arpit karne chahiye. Har cheez Bhagwan Krishna ki hi hai.
Ishvasya nidam sarvam, the whole universe is Krishna's property.
Pura Brahmand Bhagwan Krishna ki hi property hai.
Aham sarvasya prabhava, everything is coming from Krishna.
Har cheez Bhagwan Krishna se hi udit hui hai.
So, Jiva Goswami wrote a book called Harinama Amrita Vyakarana.
Harinama Amrit Vyakaran, ye Srila Jiva Goswami ne iska sankalan kiya hai.
And it's a grammar textbook in which everything is explained in relationship to Krishna.
और ये व्याकरण की पुस्तक है जिसमें प्रत्येक चीज भगवान कृष्ण से संबंधित ही समझाई गई है. पूरी की पूरी व्याकरण भगवान कृष्ण से संबंधित समझाई गई है.
So it's like Srila Prabhupada says, in all cases, nominative, objective, and so on, it's all related to Krishna.
Jaisa ki yahan Srila Prabhupada tatpare mein bhi batate hain, sabhi dashaon mein, chahe wo koi bhi dasha ho, Bhagwan Krishna se hi sambandhit.
So today is the disappearance day of Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Krishna Das Kaviraj Goswami.
Aaj Tirubhav Divas hai, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, and Shri Krishna Das Kaviraj Goswami.
So 2 days ago, I was in Radhakund and I visited the samadhis and bhajan kutirs of these great personalities.
2 days पूर्व मैं राधाकुंड में था जहां मैं इनकी समाधि और भजन स्थली पर मैं वहां पर उपस्थित था.
Of course, Krishnadas Kaviraj Goswami was the author of Chaitanya Charitamrita.
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Chaitanya Charitamrit ke lekhak hai.
There was a time when Lord Chaitanya visited East Bengal.
Ek samay tha jab Shri Chaitanya Mahaprabhu purvi Bengal gaye.
And there he met Tapan Mishra.
Jahan par main Tapan Mishra se mile.
And he told Tapan Mishra to go to Kashi, Varanasi, and later Lord Chaitanya would come there to meet him.
उन्होंने तपन मिश्रा को कहा कि आप वाराणसी जाएं, जहां पर वो बार बार आएंगे.
And तपन मिश्रा went to Kashi.
तपन मिश्रा वहां काशी में गए.
And he had a family with one little son.
उनका वहां पर परिवार था जिसमें उनके छोटे पुत्र थे.
And Lord Chaitanya came to Kashi.
श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में आए.
And तपन मिश्रा would render service to him.
और तपन मिश्रा उनकी सेवा किया करते थे.
And at that time also his son got the mercy of Lord Chaitanya.
और उसी समय उनके पुत्र को भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई.
So that little boy became Raghunath Bhatta Goswami.
जिससे वो नन्हे बालक आगे चलकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बने.
And Raghunath Das Goswami was very renounced.
और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही वैरागी थे.
Lord Chaitanya came to Vrindavan. And he found Radhakund and Shyamakund.
Shri Chaitanya Mahaprabhu Vrindavan aaye jahan par unhone Radhakund aur Shyamakund ki khoj ki.
And these places had been lost.
Ye sthan lupt ho chuke the.
But Lord Chaitanya found them.
Parantu Chaitanya Mahaprabhu ne inko dobara khoja.
And he asked Raghunath Das Goswami to excavate them and develop them.
और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को निर्देश दिया कि इनको वो स्थापित करें.
So today we can go and visit those places because of the service that Raghunath Das Goswami performed.
आज हम वहां पर उन स्थानों पर जा सकते हैं क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सेवा उस समय की थी राधाकुंड और श्यामकुंड का निर्माण करने के लिए.
Once Sanatan Goswami saw Raghunath Das sitting performing his bhajan on the shore of the Manasa Ganga.
एक बार सनातन गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी मानसी गंगा के तट पर भजन कर रहे हैं.
And Sanatan Goswami saw some tigers were coming.
और सनातन गोस्वामी ने देखा कि कुछ शेर वहां पर उपस्थित हैं.
Sanatan Goswami could also see Krishna watching over Raghunath Das Goswami, protecting him.
और सनातन गोस्वामी वहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर पाए. उन्होंने देखा भगवान कृष्ण स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी की वहां पर खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं.
And it was also very hot. The sun was shining down on Raghunath Das Goswami.
और उस समय बहुत ही कड़ी धूप भी थी.
And Sanatana Goswami saw Radharani standing behind him, covering his head with the top of her sari.
और उन्होंने देखा कि श्रीमती राधारानी रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे खड़ी होकर अपनी साड़ी से उनके धूप से बचा रही हैं.
So Sanatana Goswami told Raghunath Das, better you build a bhajan kutir so that Krishna doesn't have to protect you from the tigers and Radharani doesn't have to shade you from the sun.
The Sanatana Goswami ne Shri Raghunath Das Goswami ko kaha ki behtar ye hoga ki tum apne bhajan kutir bana lo jisse Bhagwan Krishna tumhe उनकी सेवा ना लेनी पड़े शेर से रक्षा करने के लिए और राधा रानी तुम्हें धूप से बचाने की जो सेवा कर रही है वो ना लेनी पड़े.
So there is a nice painting at Radhakund showing this.
तो राधाकुंड में एक बहुत अच्छा वहां पर पेंटिंग बनी हुई है इस लीला को दर्शाते हुए.
So I'll stop here. Is any questions?
तो मैं यहीं पर विराम दूंगा. किसी का कोई प्रश्न है?
As Srila Prabhupada mentions the Achintya Vedadat Tattva, that the full understanding of the Lord is different as well as not different from the his energies. My question was that this was propounded by Chaitanya Mahaprabhu, and thus all the Mahajanas were well acquainted with this philosophy, including, of course.
Is your question, do you need to repeat the question?
So, जी का प्रश्न है कि जैसे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद अचिंत्य भेदाभेद के बारे में बताते हैं कि जब तक हम इसको मान नहीं लेते तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं होगी. तो ये जो सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, तो इससे पूर्व जितने महाजन थे क्या वो इस सिद्धांत से अवगत थे?
As far as I know, the Achintya Veda philosophy was revealed by Chaitanya Mahaprabhu and his followers like Jiva Goswami.
ये जो दर्शन है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकट किया गया और उनके जो अनुयायी हैं जैसे जीव गोस्वामी.
Before that, there was one philosophy called Veda, but the followers of Lord Chaitanya developed that idea further with Achintya Veda.
इससे पूर्व सिद्धांत था भेदाभेद, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं उन्होंने सिद्धांत को और आगे ले गए और अचिंत्य भेदाभेद दर्शन स्थापित किया.
Something else?
सभी दशाओं में हम इस
हरे कृष्ण जी. मेरा प्रश्न था कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सभी सभी दशाओं में चाहे वो कारण करता और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक और नकारात्मक सभी दिशाओं में सब कुछ भगवान ही है, तो इसको कैसे समझेंगे?
Honestly, I have to say I don't know.
अगर ईमानदारी से कहा तो मुझे कहना होगा कि मुझे नहीं पता.
In other places, Srila Prabhupada says some things about the karakas, nominative, objective, and so on.
अन्य स्थानों पर शिला प्रभुपाद कारक के बारे में बताते हैं.
Therefore, I spoke something about that.
इसलिए मैंने उसका बारे में कुछ बताया.
But about this positive negative, I haven't seen anything where he explains exactly what he means by that. Therefore, I didn't say anything about it.
मैंने अन्य स्थानों पर इसके विषय में कुछ देखा नहीं है श्रीला प्रभुपाद को इस एग्जैक्ट चीज को समझाते हुए, इसलिए मैंने इसके बारे में व्याख्यान नहीं किया.
Sometimes श्रीला प्रभुपाद and the acharyas speak about defining things negatively and positively.
कभी कभार शिला प्रभुपाद और आचार्य किसी अनुभव को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से परिभाषित करने के विषय में बताते हैं.
मेटी मेटी मेटी, not this, that's one way to define something.
नेटी नेटी नेटी, ये एक तरीका है किसी चीज को परिभाषित करने का.
But then the question remains, what is it in the positive sense?
परंतु फिर भी प्रश्न ये रहता है, अगर ये नहीं है तो क्या है सकारात्मक दृष्टि से?
So it may be that in Srimad Bhagavatam Krishna is defined negatively. Krishna is not this, Krishna is not that.
उसी प्रकार से वैदिक साहित्यों में जो कृष्ण है उनका एक नकारात्मक रूप से भी परिभाषित किया है कि वो ये नहीं है.
But more important is the positive.
परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक रूप से बताया गया है.
Krishna's to Bhagavan Swayam, the Bhagavatam says. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan.
Krishna Param Purushottam Bhagavan.
But really, I don't know exactly what he means here.
परंतु यहाँ पर exactly Prabhupada क्या बताना चाह रहे हैं मैं इस विषय में नहीं जानता.
Okay, 9 o'clock. Okay, one more question.
It's a little out of context, but it's related to science. That will be from science background. I feel that there's a lot of influence of whatever we have studied in our textbooks, in our science textbooks, which is atheistic science I'm talking about. And Prabhupada mentions in one of the books, Science of Self-Realization, that this is also one of the chains to this material world, the attachment to mundane science. So how we can overcome that?
There is one famous verse in the Srimad Bhagavatam that says, Uttamashloka Gunanivaranam, that the perfection of every type of knowledge is the glorification of Krishna.
मेरा प्रश्न था कि जब भौतिक विज्ञान से जो एक आसक्ति है इसको भी एक चेन के समान बताया गया श्री प्रभुपाद ने, इससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि जिसमें हर ज्ञान की पूर्णता है कि भगवान का जिससे गुणगान किया जा सके।
And in his purport to that verse, Srila Prabhupada explains that physics, chemistry, everything can be engaged in Krishna's service.
श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब फिजिक्स केमिस्ट्री हर विषय भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं।
And Srila Prabhupada said in that purport that the real scientist will try to use science to show that God exists.
कि असली वैज्ञानिक विज्ञान के लेके ये बताने का प्रयास करेगा कि भगवान का अस्तित्व है।
And he said that scientific research engaged to prove God's existence is factual Hari Kirtan.
और अगर जो वैज्ञानिक रिसर्च है अगर वो इस उद्देश्य से है कि वो भगवान कृष्ण के अस्तित्व को स्थापित कर रही है तो ये वास्तव में हरि कीर्तन है।
So, in that way, science can be engaged in Krishna's service.
इस प्रकार से विज्ञान को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है।
So if it cannot be engaged like that, then we should not be so attached to it.
और अगर उसको इस रूप से नहीं लगाया जा सकता तो हमें उससे आसक्त नहीं होना चाहिए।
Better just chant Hare Krishna and be happy.
बेहतर होगा कि हरे कृष्ण जपिए और खुश रहिए।
Srila Prabhupada ki jai.
This is Prabhupada ki jai.